three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
Gandhasya Dhyananjana-salakaya Chakshurunumilitam jena Tasmai Sri Gurave Nama Vanchakalpatarubhyasya Kripasindhubhyayevacha Patitanam Pamanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurasthite Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Sarabhakta कल हम लोग बतला रहे थे जो अक्रूर जी नंदगांव में उपस्थित हैं और नंद बाबा से और कृष्ण बलराम से उनकी वार्तालाप हुई और सवेरे नंद बाबा ने ढिढोरा पिटवा दिया जी कल सवेरे हम लोग कृष्ण और बलदेव जी को लेकर कंस के धनुष यज्ञ वहां पर हम जाएंगे और परसों हम लोग लौट आएंगे। व्रत के सब लोगों ने सुना, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई, हमने इसके संबंध में बतलाया। जिसकी जैसी भक्ति है उसी के अनुसार में उनकी भावना और प्रतिक्रिया हुई। उसमें हमने ये भी बतलाया कि किस प्रकार से इसको सुन करके कोई अत्यंत व्यथित हुई, उनका मुख सूख गया, अत्यंत मुग्ध हो गई, और कोई कोई सुन करके उनके केश बंधन खुल गए, हाथ के बलय कंगन गिर गए, बहुत दुखी, उनसे भी अधिक दुखी, और उनसे भी कोई शरीर की तन मन की शुद्ध बुद्धि भूल गई, कहाँ खड़ी है कौन है ये भी भूल गई, अत्यंत उनसे भी अधिक दुखी हूँ। और कोई कोई उनकी लीलाओं का स्मरण करने लगे, अरे कल हमसे वो चले जाएंगे, उनकी गति, उनसे कृष्ण से मिलन, कृष्ण की ठठोलियां और विलास इत्यादि की बातें, उनका सौंदर्य माधुर्य गुण सबकी बातें उनके एकदम स्मरण में आए। और इस प्रकार से उनकी सुललित गति, चेष्टा और स्निग्ध व्यवहार, उनका आलोकन और उनकी नरमानी माने मधुर मनोज्ञ बातें, क्रुद्धाम आचारतांत और उनकी रासलीला इत्यादि, ये सब चिंता करके अत्यंत विरह का सर हो। इसमें हमने चार प्रकार की गोपियों की बात बतलाई, स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ और सोहित पक्ष की गोपियों का। इसमें ये ऐसा समझना चाहिए कि कृष्ण रसामृत, अखिल रसामृत सिंधु हैं। वे सब प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, किंतु उनका रसास्वादन जो कराने वाले हैं उनके विविध आश्रय हैं, जिसमें विशेष करके कृष्ण के लीला में सख सखालो माता पिता और उनके समान और जो ब्रजवासी माता पिता स्थानीय हैं और ब्रज की गोपियां हैं। ब्रज की गोपियों में भी ऐसा समझो जो कृष्ण को सब प्रकार से आह्लादित करने वाली उनकी आह्लादन शक्ति श्रीमती राधिका जी हैं और उनकी पता और पत्ते और मंजरियों के रूप में उनकी सहेलियां सखियां हैं। ये सहेलियां और कुछ नहीं श्रीमती राधिका जी के विभिन्न भावों की मूर्तियां हैं। विपक्ष और तटस्थ सुह जो कुछ भी कहा या 364 प्रकार की या 60 प्रकार की जो गोपियां हैं वो सब मूल श्रीमती राधिका जी और उनकी कांति स्वरूपाएं ये जितनी हैं, जिसमें कुछ काय विभा हैं जो राधिका जी अपने काय व्यू से इन रूप में विभिन्न रूपों में अपने भावों को प्रकाशित कर कृष्ण को विविध प्रकार से ये सेवा कर राधा सह क्रीड़ा रस आस्वादन कारण आठ सौ गोपी है रसो उपकरण। रस के उपकरण है और सब गोपियां राधा जी ही मून है। उपकरण मैंने क्या उपकरण मैंने उसको सहायता करने वाले और सब चीजें, जैसे पानी पीते हैं पानी मूल है उसमें केवड़ा का रस डाल दो चीनी डाल दो उसमें और कर दो ये सब उपकरण हो गए। उसी तरह से श्रीमती राधिका जी ही मूल है। वही अभी काय व्यू के रूप में खुद हैं श्रीमती राधिका जी और काय व्यू के रूप में और उनकी जितनी भी शक्तियां इत्यादि हैं। ऐसा ये भी समझ सकते हो कि यशोदा मैया भी राधिका जी के ही एक भाव हैं, वो भी उनसे अलग नहीं है। इस तरह से जितनी भी गोपियां हैं उनकी काय उनके पत्ते और मंजरियां हैं। आज सब गोपी है रसो पोखर प्रधानतः ये श्रीमती राधिका जी हैं। इसमें से जो स्वपक्ष की गोपियां हैं ललिता विशाखा इत्यादि वो राधा जी के भावों के अनुरूप कुछ है किंतु पूरे भाव नहीं है। उन सब में ये कुछ अधिक वैशिष्ट्य रखती हैं इसलिए ये स्वपक्ष की हैं। इसलिए विशेष विशेष क्षेत्रों में इन स्वपक्षों के अतिरिक्त और दूसरी गोपियां नहीं उसमें सम्मिलित होती। तब ये मंजरियां जो सखियां हैं रूप मंजरी प्रभृति या मान लिया कि जैसे जो साधन सिद्ध भी हैं उनको बहुत उच्च स्थान प्राप्त है वो भी सिद्धा के समान ही नित्य सिद्धा के समान ही कृष्ण की और राधिका जी की सेवा करती हैं। इसमें अंत में राधिका जी की भावना का वर्णन किया गया उनके भावों का आसंग। अब ये सब गोपियां मिलकर के कृष्ण के विरह में अत्यंत अपने अपने भावों के अनुसार में अपने भावों की अभिव्यक्ति पीछे इन्होंने की। जैसे भद्रा सखी उनका मुख सूख गया बहुत चिंतित हो गई किंतु देह दैहिक इत्यादि कुछ नहीं भूली और उनसे अधिक तो श्यामला जी उनके ऐसा न जाने क्या हो गया ये जिसको कहते हैं अष्ट साप्तिक भाव में बहुत प्रदीप्त सुदीप्त जैसे भाव उनका जो हुआ वो कुछ निम्न कोटि का और इनका कुछ और उन्नत कोटि का और इनसे भी अधिक हुआ कोटि किसका?
चंद्रावली का।
उसका क्या हुआ? तन मन शुद्धि सब कुछ भूल गई। और राधिकाचार्य के जो सखियों की जो सहेलियां थी उनको क्या हुआ? कृष्ण की सारी लीलाओं की स्मृति उनके हृदय में आ गई विरह में, और कृष्ण के साथ में उनका पहले का आलाप, पहले का नृत्य ठठोली और उनके रूप गुण क्रियाएं सब एकदम उदित हो गई, और इसमें वो अत्यंत विरह में कातर हो गई। अब ये सभी मिलकर के गोपी गोप्या उजु, इसमें ये नहीं लिखा जी गोस्वामी ने और उन्होंने, ये कौन गोपियां ये कह रही हैं? गोप्या उजु ओ विधाता समन क्वचित दया संयोज्य मित्रम प्रणयन देहिन तांस अक्तार्थान विनोक्ष अपार्थव विक्रीड़ितम ते अर्भक्षे स्थितम उठा। कौन कहा ये नहीं, तात्पर्य क्या? जैसे भी हो इनके भाव जैसे भी हो, किंतु कृष्ण से इनका विरह सबका हो रहा है, इसलिए इनका विरह सब एक तान है। मानो सभी गोपियां एक ही विरह तो उनको हुआ, चाहे वो मधु स्नेह का हो दुख स्नेह का या जैसा, सभी एक तान होकर के दुख से एक साथ बोल रहे। किंतु जहां पर बहुत से कीर्तन करने वाले एक साथ भी हैं, वहां पर एक प्रधान रहेगा, तो इसलिए प्रधान है कौन? श्रीमती, और बाकी सब उनके सुर में सुर मिला करके ये विरह का गान कर रहे हैं। जैसे गोपी गीत है वो ये कौन सा है? गोपी गीत, गोपी गीत विरह दुख है, किंतु गान कर रही हैं सुस्वर से, बड़े दुख से, किंतु तल ताल लय मान सबको मिलाकर गान कर रही हैं, या रो रहे कुछ पता नहीं चलता। जैसे गोप कुमार के प्रसंग में हम लोग देखते हैं, गोप कुमार जब वृंदावन में आए तो एक कुंज से रोदन की ध्वनि सुनाई गई, और निकट गए तो उनको मालूम नहीं पड़ा कि ये रो रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तब विरह में ऐसा होता है, रो रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, ये यदि गोपियां सुस्वर से रोदन करती हुई और ये अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रही हैं। अहो विधाता तब न पचित दया संयोज्य मैत्रम प्रणयन देहिन सांस्यकृतार्थान विनियुक्त पार्थकम विक्रीड़ितम से अर्भकचेष्टितम यथा। श्रद्धा का अर्थ यह है कि गोपियों ने कहा, हे विधाता, कृष्ण को गोपियां अक्रूर ले जा रही, अक्रूर को डायरेक्ट नहीं कर रही हैं, या कृष्ण जा रहे हैं कृष्ण के इच्छा के विपरीत, तो कृष्ण जा नहीं सकते और अक्रूर ले जा रहे हैं, तो यहां पर विधाता को क्यों दोष दे रहे हैं? यदि हम कभी किसी विपत्ति में पड़ते हैं, कोई मर जाता है या कुछ होता है, तो हम दोष किसको देते हैं? साधारण रूप में, हे भगवान, हमारे बेटे को तुमने ले लिया, भगवान ने लिया, भगवान ने तो नहीं लिया, उसके कर्म हैं, उसके और चीजें हैं, या किसी ने उसमें मार डाला तो उसको कहें, हे भगवान, मारा तो उस आदमी ने, और दोष दे रही है विधाता को, भगवान को। तो ऐसे ही ये गोपियां मानो नरलीला का फॉलो करती हुई ये बतला रही हैं, अनुसरण करती हुई, ओहो विधाता, हे विधाता, तुम्हें तनिक भी दया नहीं है, तुम इतने निश्चित हो? विधाता माने जगत की सृष्टि करने वाले, विधाता विधि को जो बनाने वाला है, संसार की जो रचना करने वाला है और उसमें विधियों को जो बनाता है कि जन्मना है, मरना है, मिलन है, बिछुड़न है, ये सब नियम है। एक सुंदर सा लड़का दिया, बहुत सुंदर, और जब वो बड़ा हुआ 12 वर्ष का, सब विषय में बहुत तेज, बहुत अच्छा, लोगों से मित्र व्यवहार, और जब अभी बड़ा और नहीं हुआ आई इतने में मर गया, जैसे कि चित्रकेतु महाराज के का लड़का। एक आदमी की अभी शादी हुई, लड़की भी खूब योग्य, लड़का भी खूब योग्य, विवाह शादी करके आ रहे थे, कुछ कुछ बात हुई होगी परस्पर, कैसे हम लोग मिले, और रास्ते में जब घर के निकट पहुंचे तो रास्ते में एक ट्रक ने उनको दोनों को कुचल दिया, वो दोनों उसके भाई से मर गए। मिलन कितना मधुर और शास्त्री कितना करुण, उनका दियो मर गए। अभी बड़े प्रेम से आलाप करते हुए आ रहे थे, क्या समझते थे जैसे अभी मर जाएगा उनका करुणांत हो जाएगा, नहीं समझते। इसी तरह से संसार में रोज ये घटते हैं, ये सब मिलन और वियोग। तो कहते हैं कि विधाता आपने इस जगत का सृजन किया, इसमें विधियां भी बढ़ाई बनाई, न क्वचित दया, किंतु तुम्हें दया नहीं है, तुम बड़ा निष्ठुर है, बहुत निष्ठुर। संयोज्य मैत्रा प्रणय न देही न, दहियों को प्राणियों को परस्पर प्रणय के द्वारा और मैत्र भाव के द्वारा तुम मिला देते हो। कैसे मिलाते हो इसकी टीका में हमारे गोस्वामी लोग बतलाएंगे, अभी इसका अनुवाद क्यों, कैसे आप देखते हैं, कैसे विवाह शादी होता है, कैसे दो आदमी मित्र बनते हैं, कैसे दोनों में प्रणय होता है, एक लड़की और लड़के में, भाई बहन में, माता पिता में प्रणय होता है, और मित्र, इसके बाद में मित्रता, बंधुत्व, एक दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं, एक दूसरों को प्रीति से उनके लिए कार्य करते हैं, प्रणय के द्वारा, मित्रता के द्वारा, बंधुत्व। बंधुत्व माने क्या, बंधु बंधुत्व, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, प्रीति से जो मिलते हैं उनको कहते हैं बंधु। इसलिए अप्रणय माने क्या, पहले मालूम होता है ये प्रीति है, जैसे श्रीमद् भागवत के प्रसंग में आता है, कबूतर और कबूतरी दोनों दाना चर रहे और प्राण से चोंचों से चोंच मिला करके अपने पुरानी बीती हुई बातों का स्मरण कर रहे हैं, और इतने में एक बहेलिया ने एक कुमारक, ऐसे जैसा हिरण्यकश्यप को बतला रहा है अपने भाई के मृत्यु के बाद में अपने उनको, और चित्रकेतु के मरने, बेटे के मरने के बाद में नारद ऋषि और अंगिरा की ये बतला है। फिर भी देख सुन करके भी हम लोगों को, पढ़ करके सुन करके भी हमारे चित्त में ये सब चीजें नहीं बैठती, और यही प्रणय और मैत्रता के साथ में रहता है, कुछ दिनों के बाद में जब वियोग होता है तब तो तफड़ा भूल नहीं पाते हैं, देखते हैं रो, समझते हैं, अनुभव नहीं होता है। बुद्धिमान पुरुष इसे शिक्षा देता है। तो प्रणयीन देही न मिलाकर तांश्च अकृता मिले, अभी दोनों में कुछ मित्रता बंधुत्व प्रणय हो रहा था, इतने में ही हुआ क्या, विधाता ने बिन लिया दोनों को पृथक कर दिया, बस काट दिया प्रीति को। विक्रीड़ितम थे अर्भक चेष्टितम, जैसा जिस प्रकार से बच्चे छोटे अर्भक चेष्टितम, किस लिए घरौंदा बनाते हैं, किस लिए उसे बिगाड़ देते हैं, किस लिए एक मूर्ति बनाते हैं फिर उसे तोड़ देते हैं, मट्टी का खिलौना, किस लिए ऐसा करते हैं, फिर चढ़ करते कोई भी उसमें प्रयोजन नहीं। इस तरह से मालूम है जैसे बच्चे हैं अज्ञान बसता ऐसा करते हैं, तुम भी ऐसा नहीं सर, तुम्हें दया का कोई भी चिन्ह नहीं, यदि होता तो ऐसे मिला करके अभी शोक भोगना आरंभ किया, थाला दे दिया, थाली में रसगुल्ले, मिठाई और तरह तरह की चीजें भरी हैं। अभी जो ही एक ग्रास दो ग्रास आरंभ किया था, सामने से उसे क्या हुआ, ललक ऐसे ले दिया, आश्चर्यचकित हो गया। ऐसे ही ये संसार है समझो, यही विधाता है। तो गोपियां उनको दोष दे रही हैं, जस्वम प्रदर्शित कुंतलाकृतम मुकुंद भक्तम सकपोल उन्नतम शोकापनोद स्मितलेश सुंदरम करोषि परोक्षम असाधतेक। पहले में तो वो बतलाया करुणा नहीं है, और दूसरे में बतला रही असाधु से तुमने जो ये किया, असाधु कृत्य किया, तुम बड़े निष्ठुर निर्दय होकर के ऐसा तुम करते हो। क्या करते हो, जब तुमने हमें आंख दी बड़ी सुंदर, और उन आंखों के सामने प्रदर्शित कुंतला व्रतम सुंदर काले काले घुंघरारे अलकों के द्वारा कृष्ण का जो मुखार बिंद है, उस पर मानो भौरे मंडरा रहे हैं। कैसा वो पैस तपस किम आचरण ज्यादा मुस्म रूप लावण्य सार असमोधन सिद्धम। कितना सुंदर दृग भी हृदय किसम अलम परिरभ सर्वा सद्भाव आपो। ये दो श्लोकों के ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। ये उद्धव जी का है। इनका रूप कैसा है, रूप लावण्य गुणों का सार है। गोपियों ने कौन सी ऐसी तपस्या की थी, अनन्य सिद्धम, जिसमें आभूषण इत्यादि की जरूरत नहीं, और उस मुखारबिंद का रस सब समय निरंतर था। कैसे उनके भ्रुकुटियां हैं, कैसा मुखारबिंद में पासा मंद मुस्कान है, कैसे बंसी बजाते हैं, कैसा उनका कुटिल दृष्टि है, इसका वर्णन कर रहे हैं। वो लावण्य सार असमोद्ध सिद्धम, असमोद्ध रूप ऐसा किसी का नहीं है। यहां पर वही कह रहे हैं, ऐसे रूप को देखने के लिए हमें आंखें दी और वो रूप ही हमारे सामने आया। कैसा, कुंडला की कुंडला प्रथम कुंडल यहां पर जल जल कर रहे हैं, लसत कुंडलम गोकुले सारा गोकुल एकदम आकर्षित हो रहा है उनके रूप से। मुकुंद भक्तम जिनके सुंदर सुंदर कुंभ जैसे प्रस्फुटित हास्य समन्वित ये मुखारविंद है। सकपोल उन्नसन कपोल इतने सुंदर हैं गणनर सब, और जिस पर कुंडल उनका सब समय चुंबन करते हैं, यशोदा मैया चुंबन करती हैं, गोपियां चुंबन करती हैं, और उन्नसम उन्नत नसम नाशिका कहती है तिल फूल जैसी अत्यंत सुंदर। नारायण का भी है किंतु इतने सुंदर नहीं, द्वारकाधीश का भी है इतने सुंदर नहीं। और विशेष करके गोपियों के समाज में जिस समय कृष्ण हो मनमथ मनमथ रूप, ऐसा रूप को देखने का हमें सौभाग्य मिला। कौन कह रही है, गोपियां कब कह रही हैं, अब कह रही हैं दीर्घ के समय, किंतु बात कब की है, ये राष्ट्रस्थली में कृष्ण अंतर ध्यान होने के बाद में जब वो रोने लगी तो कृष्ण मनमथ मनमथ रूप प्रकट करके आए, कुछ लज्जित हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, गले में पीताम्बर लटकाए हुए, वही बलमाला लेकर के लज्जित से कुछ नीची दृष्टि से कुछ ऊपर में ऐसे देखते हुए गोपियां क्या कर रही हैं, और वहां पर बैठे कितना सुंदर हो। अब उनको ये समय याद पड़ रही है विरह की दशा, मानो कृष्ण वही इस समय सामने आए। पर ये विधाता तुमने ऐसी सुंदर चीजें दी और सुंदर देखने के लिए कृष्ण को दिया, शोकोपनो स्मितलेश सुंदरम, स्मितलेश सुंदरम, आपके इस श्री अंग में किसी अंग की एक विशेष माधुरी का प्रदर्शन, खंड कल आंखों के देखने लगी तो आंखों में ही लिपट गई, कोई ध्रुवकुटी देख रहे हैं तो उसी में उनकी दृष्टि निपट हो गई, कोई बंसी बजाते हुए मुखारविंद में उनकी दृष्टि गई तो बस वहीं पर उनकी दृष्टि इधर उधर नहीं, और उसमें उन्होंने क्या देखा, सारे विश्व की का सौंदर्य का सब कुछ उसी में देखा, सारा विश्व का सौंदर्य उसके अंदर अनुभव किया उन्होंने। और जिससे उनके शोक शोक सब जग, जिस समय में कृष्ण ये मनमत मनमत रूप प्रकट करके उनके कल्पित आसन पर बैठे, दुपट्टों पर बैठे, उस समय गोपियों का शोक मोह रहा, भूल गई सब कुछ, एकदम भूल गई पिछले जो कैसे विलाप करके तड़प रही थी विरह में, ये सब शोक ये सब कुछ दूर हो गया। स्मितलेश केवल स्मितलेश, थोड़े से मुस्कान से ये सब कुछ हो जाता है। और करोति परोक्षम असाधु से, और साथ साथ में हम लोग अभी पूर्ण रूप से उनका सौंदर्य का, उनके गति का, विलास का हम लोग रसास्वादन नहीं कर पाए, उसी के भीतर झट वियोग कर दिया, यह तुम्हारा कृत्य जो है अत्यंत असाधु है। क्रूरस्तम अक्रूरम आख्याय आख्याया स्मन या चक्षुर ही दत्तम भर से वताज्ञवत जे नैक देशे अखिल सर्ग सौष्टवम तदीय मा द्राक्ष वयम मधुदेश। अभी यहां पर कृष्ण के सौंदर्य को बतला रहे हैं मधुदेश, तुम है तो यथार्थ में क्रूर, तुम्हारा यह कार्य जो है कृष्ण को ब्रज से ले जाना, यह बहुत क्रूरता का कार्य अत्यंत निंदनीय है, किंतु तुम अक्रूर बन करके, हे विधाता तुम ये अक्रूर तुम ही हो, अक्रूर कोई और दूसरा, तुम ही अक्रूर का रूप धारण करके नाम रखा अक्रूर, किंतु है तुम क्रूर, क्रूरस्तम अक्रूरमाख है, अक्रूर की आख्या लेकर अक्रूर का नाम लेकर के, ये मेरा नाम अक्रूर है। स्म न चक्षुर ही दत्तम हर्षे वताज्ञवत, आंखें तो दी हमें और आंख के द्वारा कृष्ण के श्री अंग के एक देश का हमने दर्शन कर, अखिल सर्ग सौष्टम, सर्ग माने सृष्टि, अखिल सृष्टि का सौंदर्य जो सार है उसके कृष्ण के एक अंग में ही है, यह देखना का हमारा सौभाग्य दिया विधाता, किंतु ये मूर्खता तुम्हारी क्या, साथ ही साथ में क्षण मात्र में ही तदियम अध्यक्ष वयम मधुदेश, और ऐसे मधुदेश जो मधुसूदन है उनके दर्शन से हमें वंचित कर दिया, हम तो अभी उनका ये सब कुछ भी रसा स्वादन नहीं कर सकी, अभी कभी तक तुरंत मिले और तुमने साथ ही साथ में ये सब दूर कर दिया, हमारे आंखें ले ली तुमने, आंखें दी और आंखें दिया, आंखें दी जिसे ये रूप देखा, तो यदि कोई कहे कि अक्रूर आया आंख तो लिया नहीं, वो तो कृष्ण को ले गया, तो तुम्हारे आंखें जाने का प्रश्न क्या है, यही आंख लेना है, कृष्ण को ले लिया तो वह है ना, वही आंखों आंख वाला वही व्यक्ति है, अक्लनतां फलमिदं न परम विदाम सखा पशून अनुव्यवेश यथोर्वयस्य वक्त्रं भजेश सुतो अनुबेन जुष्टम जैवा निपीतम अनुरक्त कटाक्षम। जिन्होंने कृष्ण को वनचारण करते, गोचारण करते समय में जाते हुए, गोष्ठ से वन की तरफ में जाते हुए देखा, और देख करके आगे आगे बलदेव जी हैं, क्या हो गया भाई, कौन किया, कौन आदमी है, कौन लड़का है,
कान पकड़ करके इससे बाहर कर।
ऐसे लड़के सब यहाँ न आता है मत आए। क्या कह रहा था? आंखों के आंखों का सार क्या है? यदि कृष्ण को वन में गोचारण करते हुए जाते, आगे आगे बलदेव जी, पीछे पीछे जिनके मुखार बिंद में मुरली है और वे जा रहे हों और कटाक्ष से भरे हुए देख रहे गोपियों की तरफ में देख रहे हैं, उनका मुखारबिंद जी लोगों ने नहीं देखा, उनकी आंखें रहना व्यर्थ है। आंखों का यही तात्पर्य है कि कृष्ण का दर्शन ये सबके लिए। गोपियां तो अपने लिए कह रही हैं, किंतु यहां पर सबके लिए भगवान ने आंख दी। यदि इस आंख के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो आंखें बेकार मोर पंख की आंखें हैं, या उस पर कहते कि वज्र पड़ जाए, गिर जाए, उन्नयनों का क्या जरूरत है, उस पर वज्र पड़ जाए जिससे वो नष्ट हो जाए, ये शरीर जिससे कि आंखें भी, ये शरीर का कोई जरूरत नहीं है। यदि भगवान का भजन नहीं हुआ, दिन रात आदमी इस काम में लगा रहे बेकार का भोगस, अंत में मर करके चला जाएगा। और तभी हम शरीर के लिए ही करते हैं और इस शरीर में आसक्त रहते हैं, तनिक भी उनको ज्ञान नहीं होता, तनिक भी संसार से विरक्ति नहीं। रोज देखते हैं लाखों ऐसे चीजें और तनिक भी विरक्ति नहीं होती, भगवत भजन की स्पृहा नहीं होती, तो ऐसे शरीर की क्या जरूरत है। अरे गोपियां कर रही हैं जो दिन रात उनकी सेवा करते, वो कहते हम ये शरीर को, मिट्टी का शरीर को क्यों भार को बहन करके ले जा रहे, कदन भार कर रही हूं। और हम लोगों को तनिक भी भजन करने की लालसा नहीं होती, अरे घर में रहो किंतु भजन तो करो, उस घर में क्या जरूरत है यदि कोई भजन नहीं होता। देखते हैं कि पिताजी मर गए कुछ नहीं ले गए, माताजी मर गई कुछ नहीं ले गई, और संसार की गति हम रोज देख रहे हैं, मथुरा में ही लाखों इसके उदाहरण हम देख रहे हैं, फिर भी हमारी चेतना नहीं, भजन में रुचि नहीं। उनको मधुद्विष कर रही हैं, मधुद्विष माने क्या होता है, मधुसूदन, मधुसूदन माने क्या, बहुत से अर्थ। मधु दो प्रकार का, एक संसार में आसक्ति जो हमारी है वो ये मधु है, उसको जो काटने वाले हैं उसको मधुसूदन कहते हैं, संसारिक आसक्ति को जो नष्ट कर दे वो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, इसलिए कृष्ण मधुसूदन। दूसरी बात मधुसूदन, मधु माने मधु, संसार का, गोपियों के प्रेम का मधु, भक्तों के प्रेम का मधु, जो आस्वादन करते हैं उसको तो काटा, भक्तों के साधन काल में जो संसार के प्रति जो आसक्ति है, हम आसक्ति रोज बढ़ाना चाहते हैं संसार के प्रति, किंतु जो काट देते हैं, काटने वाले दो हैं, एक साधु संघ अपने संगति अपने वचनों के कुठार से उसको है, वो क्या प्रथम स्कंद, हाँ व्यासंग, उक्ति भी उक्ति रूपी तलवार से उसकी आसक्ति को छेदन कर देते हैं, छिंदंत को विदा, अपने तत्वपूर्ण इन वैराग्यपूर्ण वाक्यों से हमारा ये आसक्ति को छेदन कर देते हैं, किंतु कृष्ण संपूर्ण रूप से कर देते हैं, इसलिए उनका नाम मधुसूदन। और दूसरा गोपियों के प्रेम रूपी इस मधु का जो आस्वादन करने वाले हैं वो हैं मधुसूदन। यहां पर मधु दिशा है, मधुसूदन दोनों अर्थ में लिया गया, क्या ये कृष्ण ने हमारे साथ में प्रणय के द्वारा प्रीति बढ़ाई, ये विधाता असल में है कौन, ये कृष्ण ही विधाता है, दूसरा विधा, ये विधाताओं का विधाता है, प्रणय हमारे साथ में प्रेम के साथ में कुछ दिन हम लोग साथ में, और यही कृष्ण इस प्रीति को काट करके और जा रहा है, रो रही है, विलाप कर रही है, रथ पर खुद चढ़ रहा देख रहा है, उनके तरफ में खुद देख करके आश्वासन ले, हाँ ठीक है, उनके तरफ देखा नहीं पूर्ण करके, फिर क्या हुआ, गोपियां गिर पड़ी, क्या हुई, कुछ नहीं देखा। हमने तथा बढ़ा करके, बंदूक बढ़ा करके और फिर उसे काट काट करके जा रहे। इसलिए उनके प्रति उस नाम का मधुसूदन विधुदिशा उसको कटाक्ष कर रहे हैं गोपियां कृष्ण के प्रति भी। अब हम लोग चलें व्याख्या की तरफ में। कितना 7 बज गया? 7 बज गया। ठीक 6 बज गया। अब इन्होंने बतला रहे हैं जीव गोस्वामी या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। पहले तो उन श्लोकों में एक एक पक्ष की स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ और सुहित पक्ष गोपियों के भावों की अभिव्यक्ति करके बतला दिए किनकी कैसी दशा हो रही। अब इसमें गोप्य उचिव माने गोपियां सब बोली और इसमें यह भेद नहीं दिखलाया कि कौन गोपियां बोली। तो इसका मतलब है इसकी अग्रणी श्रीमती राधिका जी हैं और सब गोपियां उनके पीछे से एक में एक सुर मिलाकर दीरा व्यथा को वो अभिव्यक्ति कर रही है, बोल रही है। इधर दीरा की व्यथा सब में है, कुछ अधिक है कुछ कम है, किंतु ये जो बातें हैं ये साधारण बातें, ये सभी की अभी सभी की ये समझो जैसे उन्हीं की उक्तियां हैं। ओ विधाता तमना पचित दया संजोग्य मित्रा प्रणय न देहिना। कहते हैं गोपियां सब रो रही हैं, रो करके विलाप कर रही हैं। कोई आगे पीछे जैसे कि संसार के किसी के शोक में वियोग में जब रोते हैं तो एक साथ नहीं, किंतु गोपियों का कैसा है, एक साथ में एक तान में एक लय में एक स्वर में। गोपियों का स्वर कितना मीठा, एक स्वर में मिला सके। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे तो दो चारों का एक समान मिलेगा और बाकी का कोई इधर से मिलेगा, ध्यान से देखेंगे अलग अलग हो जाएगा। और उनका सबका मिला हुआ एक तान सबका ये अपने दुखों को व्यक्त कर रही है। यदि कोई साधक भजन करते समय उनको इस चीज का ध्यान न रहे कि कृष्ण का हम न जाने कब से कृष्ण को भूले हुए हैं, गुरु की कृपा से हम लोग ये समझें कि हमारा कर्तव्य है भजन करना, हमारे भजन का उद्देश्य कुछ खास होना चाहिए। उसमें यदि विरह की अनुभूति न हो, दुख न हो, तो वो भजन भजन नहीं है। और ये होगा जब संबंध ज्ञान कुछ आएगा और अनर्थ तो कुछ जाएगा दूर, तभी ये संभव। इसलिए देखो रघुना हमारे गोपकिशोर दास बाज महाराज का कैसे कैसे वो रो रहे हैं, कहाँ है वो और अकेले, किसी को सुना नहीं रहे, रो रहे हैं कितने जोर से और जोर से कह रहे हैं और स्वर से कुछ आए गो राधे प्रेममयी राधे राधे, कितना रो रहे हैं। हम लोग सुनते हैं कुछ भी हृदय में नहीं है और कैसे वो रो रहे हैं हृदय से और कुथा प्रेम कुथा गो प्रेममयी राधे राधे कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे अच्युत। इस प्रकार से कानु मन मोहिनी राधे राधे एक एक भाव आ रहे हैं, रो रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। अरे इतना आता है हम तो इतना तो रो ही सकते हैं कि हाँ हाँ हमारा कितना दुर्भाग्य कृष्ण का भजन नहीं हो सकता, हमारे अनर्थ दूर नहीं हो इसके लिए तो रो सकते हैं। हम रोज देख रहे हैं किंतु कृष्ण भजन की तीव्र लालसा नहीं हो रही, कितनी तरह की कामनाएं हृदय में, अभी पैसे भोगने की। कोई कोई बहुत से लोग हैं मठ में आते हैं, देखते हैं कि यहाँ चीजें रखी हैं, कहाँ लोग सब दे जाते हैं प्रेम से यहाँ और यहाँ से कुछ लोग चुरा करके अपना पॉकेट भरते हैं। कहाँ संसार के लोग बड़े प्रेम के साथ में देते हैं ना, और कोई बक्से को तोड़ करके उसमें से पैसे निकाल करके अपने का, बताओ कितना दूर चाहिए। किसी को कृष्ण के प्रति, इन चीजों के प्रति कोई आसक्ति रुचि नहीं है। गृहस्थों को जितना अपने घर के द्रव्यों के प्रति ममता है, कृष्ण के इन चीजों के प्रति ममता नहीं। यदि इन चीजों के प्रति ममता ही नहीं तो भजन कहां, ममता होनी चाहिए ना। ये कृष्ण की चीजें हैं, ये हमारे गुरु जी की खड़ाऊ है, ये हमारे कृष्ण की वृंदा देवी का ये है, सबके प्रति ममता का भाव होना चाहिए, यही से आरंभ होता है भजन। तो इसलिए इन गोपियों के भावों को सुन करके हमें ये होना चाहिए। ये कृष्ण का भजन इसमें नहीं हुआ, हमारी संसारी कितनी प्रकार की आसक्ति है, हमारे कितने तरह की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इसके लिए भी दुख नहीं होता है। हम चाहते हैं कि कैसे इसमें रख करके अपना सुंदर अपने एक घर रहे, अटैच बाथरूम हमको मिल जाए, अब बड़े थाट के साथ में रहूं, ऐसा करूं वैसा करूं, इसके लिए दुख कष्ट कुछ अनुभूति नहीं होती। तो अश्रु पात रोत रोदन करती हुई व्याकुल होकर के ये गोपियां अपनी पूंजी भूत वेदना, पूंजी भेद माने क्या, पूंजी भूत वेदना निकाल रही है, निकल रही है अपने आप। वो लिखा है ना एक साधुओं के पास में बैठ करके उनके हृदय से, हाँ, तस्मिन महन मुखरितम मधुबी चरित्र पीयूष अशेष सरिता परितः समंती ताजे पिवंत निपगाढ़ करण। जो साधु लोग, संत लोग, भक्त लोग, रसिक भक्त लोग, क्या है श्लोक, तस्मिन महन मुखरित, महन माने क्या, अनुभूति संपन्न, अनर्थ दूर जिनका हो गया, ऐसे महापुरुषों के हृदय में जो कृष्ण रस कृष्ण कथाएं अपने आप निरंतर विगलित हो रही हैं, मानो ये कैसा है जैसे किसी पहाड़ से निर्झर निकल रहे, कभी वो सूखता नहीं, मानो सरोवर से ये सब नदियां निकलती हैं, पानी कभी नहीं, निरंतर पानी का प्रवाह लगा रहता है, ऐसे उनके हृदय में भगवान की लीला कथाएं सब हैं, निरंतर अपने आप बिना चेष्टा के निकल रही हैं। उनको यदि कोई सुने इन लीला कथाओं को तो शोक मोह भय सब कुछ दूर हो जाए, अनर्थ सारे दूर, और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, सहज भाव से तब भजन करने की लालसा आएगी और ये सब सुनने की इच्छा होगी और निरंतर यही सब भावना आएगी। कहने लगे हे विधाता, तुम अखिल विश्वान ब्रह्मांड के सब कुछ का समुचित विधान करते हो, लोग जन्म लेते हैं, क्रमशः वो बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनकी शादी होती है, विवाह होता है, फिर धीरे धीरे अलग होते हैं, फिर मर जाते हैं, अपने अपने कर्मों का सब भोग करते हैं, अच्छा बुरा सब। ये विधान किसने किया, सूर्य ठीक समय पर उगते हैं, समुद्र में समय पर ज्वार भाटा आती है, चंद्र उगते हैं, दिन में सूर्य उगते हैं, ये सब का विधान करने वाला कौन है, वही है विधाता। हमारे सुख दुखों का नियंता विधान करने वाला कौन है, ऐसे मालूम पड़ता है कि वो विधाता है, साधारण रूप से ये विधाता तुमने ये सब किया, किंतु तुम्हारे राज्य में और इस विधान में दया नाम की कोई एक बूंद भी नहीं, लेश मात्र एक गंध भी नहीं है दया की, हम तो कहीं नहीं देख रहे, यदि होता तो हम देखते हैं जिससे तुम्हारी दया है। मिलाया दोनों को, बहुत सुंदर जोड़े को मिलाया और साथ ही साथ में बस समाप्त, उनको अलग, ये तुम्हारी कौन सी दया है, मिलाया क्यों, एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया घर में और थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलने फिरने लगा, मुस्कुराने लगा ने? और थोड़ी देर के बाद में वो मर गया, तो किस लिए दिया, उसे तो बांझ होना ही अच्छा था, तुम्हारे इस विधान में कहीं भी दया का एक बूंद नहीं है, गंध नहीं है। यदि होता तो ऐसा तुम निर्दय होकर निर्दय नहीं हो सकते। क्या कृष्ण जैसा ऐसी बड़ी संपत्ति, इतना रूप, इतना सब दिया दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ में उनको हमसे वियोग करा दिया। इसलिए हम कहती हैं कि तुम्हारे अंदर में दया और माया दोनों नहीं है। माया माने प्रीति प्रेम, दया और माया तनिक भी नहीं है। अवश्य दया शक्ति और सामर्थ्य ये तुम्हारे एकाधारे नहीं, तुम्हारे अंदर में नहीं आए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड सृष्टि का विधान तुमने जो किया सब कुछ जानता है, किंतु फिर भी बच्चों की भांति खिलौने बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं। तुमने ये खिलौना बनाया अपने परितुष्टि के लिए अपने, तो तुमने दया तो दिखती नहीं है। क्यों बनाया और फिर मिलाया और क्या फिर अलग कर दिया। तुम हृदयहीन हो, ममताहीन हो, तुम सचमुच में बड़े भारी कुरु। आज यहीं तक, कल गौर प्रमाण। ऐसा कोई अब इन्हें बतला रहे हैं जीव गोस्वामी या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। पहले तो उन श्लोकों में एक एक पक्ष की, स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ और सुहित पक्ष की गोपियों के भावों की अभिव्यक्ति करके बतला दिए किनकी कैसी दशा हो रही है। अब इसमें गुप्त ऊंची माने गोपियां सब बोली, और इसमें यह भेद नहीं दिखलाया कि कौन गोपियां बोली, तो इसका मतलब है इसकी अग्रणी श्रीमती राधिका जी हैं और सब गोपियां उनके पीछे से एक में एक सुर मिलाकर दीरा व्यथा को वो अभिव्यक्ति कर रही है, बोल रही है। इधर दीरा की व्यथा सब में है, कुछ अधिक है कुछ कम है, किंतु ये जो बातें हैं ये साधारण बातें, ये सभी की अभी सभी की ये समझो जैसे उन्हीं की उक्तियां हैं। ओ विधाता तमना पचित दया संजोग्य मित्रा प्रणय न देहीन, कहते हैं गोपियां सब रो रही हैं, रो करके विलाप कर रही हैं। कोई आगे पीछे जैसे कि संसार के किसी के शोक में, वियोग में जब रोते हैं तो एक साथ नहीं, किंतु गोपियों का कैसा है, एक साथ में, एक तान में, एक लय में, एक स्वर में। गोपियों का स्वर कितना मीठा, एक स्वर में मिला सके। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे तो दो चारों का एक समान मिलेगा और बाकी का कोई इधर से मिलेगा, ध्यान से देखेंगे अलग अलग हो जाएगा। और उनका सबका मिला हुआ एक तान, सबका ये अपने दुखों को व्यक्त कर रही है। यदि कोई साधक भजन करते समय उनको इस चीज का ध्यान न रहे कि कृष्ण का हम न जाने कब से कृष्ण को भूले हुए हैं, गुरु की कृपा से हम लोग ये समझें कि हमारा कर्तव्य है भजन करना, हमारे भजन का उद्देश्य कुछ खास होना चाहिए। उसमें यदि विरह की अनुभूति न हो, दुख न हो, तो वो भजन भजन नहीं है। और ये होगा जब संबंध ज्ञान कुछ आएगा और अनर्थ कुछ जाएगा दूर तभी ये संभव। इसलिए देखो रघुना हमारे गोपकिशोर दास बाबा महाराज का कैसे कैसे वो रो रहे हैं, कहाँ हैं वो और अकेले किसी को सुना नहीं रहे, रो रहे हैं कितने जोश और जोश से कह रहे हैं और स्वर से कुछ आए गो राधे प्रेममयी राधे राधे, कितना रो रहे हैं। हम लोग सुनते हैं कुछ भी हृदय में नहीं, और कैसे वो रो रहे हैं हृदय से और कुथा प्रेम कुथाए गो प्रेममयी राधे राधे कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे अच्युत। इस प्रकार से कानू मन मोहिनी राधे राधे एक एक भाव आ रहे हैं, रो रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। अरे इतना चाहे हम तो इतना तो रो ही सकते हैं कि हा हा हमारा कितना दुर्भाग्य कृष्ण का भजन नहीं हो सकता, हमारे अनर्थ दूर नहीं हो इसके लिए तो रो सकते हैं। हम रोज देख रहे हैं किंतु कृष्ण भजन की तीव्र लालसा नहीं हो रही, कितनी तरह की कामनाएं हृदय में, अभी पैसे भोगने की, कोई कोई बहुत से लोग हैं मठ में आते हैं देखते हैं कि यहाँ चीजें रखी हैं, कहाँ लोग सब दे जाते हैं प्रेम से यहाँ और यहाँ से कुछ लोग चुरा करके अपना पॉकेट भरते हैं, कहाँ संसार के लोग बड़े प्रेम के साथ में देते हैं ना, और कोई बक्से को तोड़ करके उसमें से पैसे निकाल करके अपने का, बताओ कितना दूर चाहिए। किसी को कृष्ण के प्रति इन चीजों के प्रति कोई आसक्ति रुचि नहीं है, गृहस्थों को जितना अपने घर के द्रव्यों के प्रति ममता है कृष्ण के इन चीजों के प्रति ममता नहीं, यदि इन चीजों के प्रति ममता ही नहीं तो भजन कहाँ, ममता होनी चाहिए ना, ये कृष्ण की चीजें हैं, ये हमारे गुरु जी की खड़ाऊ है, ये हमारे कृष्ण की वृंदा देवी का ये है, सबके प्रति ममता का भाव होना चाहिए, यहीं से आरंभ होता है भजन। तो इसलिए इन गोपियों के भावों को सुन करके हमें ये होना चाहिए, ये कृष्ण का भजन इसमें नहीं हुआ, हमारी संसारी कितनी प्रकार की आसक्ति हैं, हमारे कितने तरह की कामनाएं हैं वासनाएं हैं, इसके लिए भी दुख नहीं होता। हम चाहते हैं कि कैसे इसमें रख करके अपना सुंदर अपने एक घर रहे, अटैच बाथरूम हमको मिल जाए, अब बड़े थाट के साथ में रहूं, ऐसा करूं वैसा करूं, इसके लिए दुख कष्ट कुछ अनुभूति नहीं होती। तो अश्रु पात रोत रोदन करती हुई व्याकुल होकर के ये गोपियां अपनी पूंजी भूत वेदना, पूंजी भेद माने क्या, पूंजी भूत वेदना को निकाल रही है, निकल रही है अपने आप, वो लिखा है ना एक साधुओं के पास में बैठ करके उनके हृदय से, हाँ तस्मिन महन मुखरितम मधुबी चरित्र पीयूष अशेष सरित परित समंती साजे पिवंत निपगाढ़ करण, जो साधु लोग संत लोग भक्त लोग रसिक भक्त लोग क्या है श्लोक, तस्मिन महन मुखरित, महन माने क्या अनुभूति संपन्न अनर्थ दूर जिनका हो गया, ऐसे महापुरुषों के हृदय में जो कृष्ण रस कृष्ण कथाएं अपने आप निरंतर दिगलित हो रही हैं, मानो ये कैसा है जैसे किसी पहाड़ से निर्झर निकल रहे, कभी वो सूखता नहीं, मानो सरोवर से ये सब नदियां निकलती हैं, पानी कभी नहीं, निरंतर पानी का प्रवाह लगा रहता है, ऐसे उनके हृदय में भगवान की लीला कथाएं सब है निरंतर अपने आप बिना चेष्टा के निकल रही हैं। उनको यदि कोई सुने इन लीला कथाओं को तो शोक मोह भय सब कुछ दूर हो जाए, अनर्थ सारे दूर, और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, सहज भाव से तब भजन करने की लालसा आएगी और ये सब सुनने की इच्छा होगी और निरंतर यही सब भावना आएगी। कहने लगे हे विधाता, तुम अखिल विश्वान ब्रह्मांड के सब कुछ का समुचित विधान करते हो, लोग जन्म लेते हैं, क्रमशः वो बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनकी शादी होती है, विवाह होता है, फिर धीरे धीरे अलग होते हैं, फिर मर जाते हैं, अपने अपने कर्मों का सब भोग करते हैं, अच्छा बुरा सब। ये विधान किसने किया? सूर्य ठीक समय पर उगते हैं, समुद्र में समय पर ज्वार भाटा आती है, चंद्र उगते हैं, दिन में सूर्य उगते हैं, ये सब का विधान करने वाला कौन है? वही है विधाता। हमारे सुख दुखों का नियंता विधान करने वाला कौन है? ऐसे मालूम पड़ता है कि वो विधाता है, साधारण रूप से ये विधाता तुमने ये सब किया, किंतु तुम्हारे राज्य में और इस विधान में दयानाम की कोई एक बूंद भी नहीं, लेश मात्र एक गंध भी नहीं है दया की, हम तो कहीं नहीं देख रहे। यदि होता तो हम देखते हैं जिससे तुम्हारी दया है। मिलाया दोनों को, बहुत सुंदर जोड़े को मिलाया, और साथ ही साथ में बस समाप्त, उनको अलग, ये तुम्हारी कौन सी दया है? मिलाया क्यों? एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया घर में, और थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलने फिरने लगा, मुस्कुराने लगा, और थोड़ी देर के बाद में वो मर गया, तो किस लिए दिया? उसे तो बांझ होना ही अच्छा था। तुम्हारे इस विधान में कहीं भी दया का एक बूंद नहीं है, गंध नहीं है। यदि होता तो ऐसा तुम निर्दय होकर निर्दय नहीं हो सकते क्या? कृष्ण जैसा ऐसी बड़ी संपत्ति, इतना रूप, इतना सब कुछ दिया दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ में उनको हमसे वियोग करा दिया, इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में दया और माया दोनों नहीं है। माया माने प्रीति प्रेम, दया और माया तनिक भी नहीं है। अवश्य दया शक्ति और सामर्थ्य ये तुम्हारे एकाधारे नहीं, तुम्हारे अंदर में नहीं आए की बात नहीं है, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड सृष्टि का विधान तुमने जो किया सब कुछ जानता है, किंतु फिर भी बच्चों की भांति खिलौने बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं। तुमने ये खिलौना बनाया अपने परितुष्टि के लिए अपने, तो तुमने दया तो दिखती नहीं है, क्यों बनाया और फिर मिलाया और क्या फिर अलग कर दिया? तुम हृदयहीन हो, ममताहीन हो, तुम सचमुच में बड़े भारी कुरु। आज यहीं तक, कल गौर प्रमाण, ऐसा कोई